हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपीनाथ नमस्तु तप्त कंचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देव प्रणमामि हरि प्रिय हा देवी काकू भर गद गदयाद्यवाचा जाची निपत भूवि दंडवत उद्भटर्ति आस्य प्रसादम बुधस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके तव गणे गणनं विधे अंग श्यामलिम छटाभिरभितो मंदिकृतेन्दे वरम जटं जागुडरोच संग विदधतं पट्टंबरस्य श्रिया वृंदारण्य निवासिनं हृदिल सद्दामाधिरामोदरं राधास्कंद निवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायें दामो भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरंगमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना धेनुमस्ते गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतपैतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि त्वैवास्मि त्वैवास्मि न जिवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणन्तिके वदामि राधां करुणाभरद्रं भजामि राधां मधुरस्मितार्थं वदामि राधां करुणाभरद्रं ततो मम नास्ति गतिर्नकार। हम लोग वृंदावन में रहते समय में भ्रमर गीत के संबंध में कुछ बतला रहे थे। उसमें मिग्रीयु कपिंद्रम विव्यथे लुप्त धर्मा स्त्रीम अकृतदेवोपार स्त्री जीतः कामयानम बलिमपि बलिमत्वा वैष्टयभ्यां सवतज सदर्मशित सख्यै दुष्टजत तत्कथा। इसमें हम लोग बतला रहे हैं। इसमें ये अवजल्प राधा जी का चित्र जल्प का और जल्प बतला रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी यहाँ पर कह रहे हैं, इसकी व्याख्या हमने की कि मृगु रीव कपिंद्रम विव्यधे लुप्त धर्मा ही कह रही है। श्याम से हमारा कोई भी संबंध नहीं, श्याम रंग से काले रंग से जितने श्याम रंग हैं उनको सतयुग त्रेता और द्वापर तीनों का भी लिया और बतलाया। इससे ये मालूम होता है कि राधा जी को ये किस प्रकार से पता है कि यही कृष्ण ही त्रेता युग में राम थे और सतयुग में वामन जी थे। ऐसे ही इसमें लगता है, इसलिए श्याम रंग पर कटाक्ष करते हुए कह रही हैं, देखो त्रेता युग में एक व्यक्ति था श्याम, जिस मृगा को कोई नहीं मारते हैं ऐसा निष्ठुर निर्दय कठोर हृदय का उसने कपि इंद्र बालिका वध किया। लुब्ध धर्मा, लुब्ध माने जो शिकार खेलने वाले हैं, बहेलिए जो है वो लोग भी नहीं मारते उनको बंदरों को, किंतु मृगयु रीव मृगया की भांति शिकार खेलने की भांति बहेलिए की भांति परम निष्ठुर होकर के उसको मारा। बहेलिया गरीब आदमी होता है, दरिद्र, पेट के जीविका के लिए खाने के लिए या उसका मांस बेचने के लिए वो ऐसा कर सकता है। इनको जरूरत थी कि नहीं बेचने की, ये तो राजा धीराज है, इनको बेचने की जरूरत नहीं है, फिर उसको क्यों मारा? विशेष करके बंदरों का मांस नहीं कोई खाता, तभी उन्होंने ऐसे मारा। इतना निष्ठुर, वो भी छल कपट से मारा, पेड़ की आड़ से मारा। लुप्त धर्मा, धर्म को भूल गए, अधार्मिक जैसा, उसका दूसरा भी अधार्मिक जैसा। स्त्रियम कृत विरूपा स्त्रीजीत कामयान, स्त्रियम कृत विरूपा, स्त्री को जो उनके रूप को देख करके, सौंदर्य को देख करके मोहित हो गई, जो कि जिनके संबंध में ऐसा लिखा गया है कि इनसे जो कोई कामना करेगा उस समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, वंचा कल करू, जैसे भी कोई कामना की उस कामना को पूर्ण करना उनका कर्तव्य है। कामना पूर्ण तो दूर रहा, स्त्री जीत होकर, स्त्री जीत माने स्त्रियों को जीत लिया है ऐसा नहीं, द्वारा जो जीत लिए स्त्रियों के द्वारा, ये समास पूर्व प्रधान, स्त्रियों के द्वारा जीता हुआ उसके वशीभूत होकर के, और एक स्त्री का नाक कान काट लिया विरूपा। किस लिए? कि कहीं इसके फिर से कोई भी व्यक्ति इसको त्याग ना करे, इतना निष्ठुर भविष्य देख करके उसका आगा पीछा सब सर्वस्व नष्ट कर दिया। कामयानम, कामयानम क्या संस्कृत में कामा की थी, काम एव ज्ञानम, काम एव ज्ञानम प्राप्ति साधनम जस्या तां स्त्री, और सूर्पनखा के लिए बता रहे, उसने काम किया, कामना की हमारे ये पति हूं, इसलिए उनके पास में काम में अंधी होकर के गई और उसको उन्होंने नाक कान कटवा लिए। क्यों किया? अधार्मिक जैसा काम, निष्ठुरता जैसा काम, उसका भविष्य भी नष्ट कर दिया, जो कोई भी हमको इसको कोई ग्रहण ना करे। स्त्री कामयानम, और एक और भी काला व्यक्ति, श्यामल व्यक्ति, वो हुआ बलि बामन, और उन्होंने बलिमत्वा बलिम अत्वा खाकर उसका सर्वस्व ग्रहण कर, सर्वस्व ले लिया, लेकर के अवेष्टय उनको बांध करके गिरा दिया नाक पास से, गिरा करके, और वो बेचारा रोने लगा, वो तो ब्रह्मा जी आए उनको छुड़ा दिया, और बलि प्रहलाद महाराज ऐसा निष्ठुर व्यक्ति, जैसे कौवे ठुकराते हैं खा करके, कांव कांव करके अपने पूरे समाज को बुला लेते हैं, और सभी मिल करके वो स्त्री यदि जाती है लेकर के कोई ठाकुर भोग की चीज तो उसको ले भी लेते हैं और ठुकराते हैं, ऐसे इसका सर्वस्व धारण करके और ऐसा कर दिया, उसको बांध करके रख दिया। इसमें एक ये भाव आता है कि इन्होंने, इनको पता है कि यही राम थे और यही
बामन,
तो फिर मधुर भाव कैसे होगा, इसके लिए कुछ बतला रहे हैं। यह दिव्य उन्माद है, ऐश्वर्य को ऐसा लिया गया है, ब्रज में ऐश्वर्य भाव तिरोहित होता है, रहता है तिरोहित रहता है, अच्छा भी रहता है, गोवर्धन भी धारण किया और भी जो ऐश्वर्य युक्त कार्य है उनको किया, किंतु माधुर्य द्वारा उसकी अभिव्यक्ति छिपी रहती है, वो दिखलाई नहीं पड़ती। उन्होंने नारायण ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, किंतु ऐश्वर्य न रहे केवल माधुर्य रहे, ऐसा होने से ये संसारिक बातें हो जाएंगी। इसलिए भगवान में ऐश्वर्य रहेगा, यदि न रहे तो फिर भगवत्ता ही नहीं रही, तो फिर लौकिक बातें रह गई, इसलिए ऐश्वर्य है, किंतु माधुर्य के द्वारा अच्छा दिख रहेगा। अब यहां किस रूप में, मिलन में संयोग में उसका भाव नहीं रहे, क्या होगा, मिलन में नहीं रहेगा, संयोग में नहीं रहता, वियोग में कभी कभी वो आ जाता है, ऐश्वर्य का भाव, ये भगवत्ता का भाव संयोग में तो कभी नहीं रहेगा, भूल जाएगा, उसके द्वारा एकदम ढका रहेगा, वियोग में कभी कभी आए, जैसे 10 मन दूध हो और एक बड़ी कड़ाही में उसे उबाल रहे हैं, गर्मी खूब दी जा रही है, आग जलाई जा रही, गर्म होते होते जबकि वो टकबक करके फूटने लगेगा तो नीचे का ऊपर आता है, ऊपर का नीचे जाता है, उसमें एक छोटा सा टुकड़ा सूखा कोई 3 का उसमें पड़ जाए तो वो सब समय नहीं दिखाई पड़ता, उसको पकड़ने के लिए जाओ ना तो क्या होगा, जो जगह तो नीचे चला जाएगा, और वो बहुत देर के बाद में घूमता 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 है तब फिर ऊपर आएगा, और जब ही उसको फिर निकालो, चम्मच लगाओ या कुछ भी लगाओ, कलछी लगाओ, वो फिर नीचे चला, थोड़ी देर के लिए दिखता है। तो उसी तरह से वियोग में, विप्रलम्ब भाव में ये कभी कभी भाव आता है, स्मरण होता है, किंतु फिर थोड़े समय के लिए ये चला जाता है। किस रूप में आता है, व्यभिचारी के रूप में, ने? एक होता है स्थाई भाव, एक विभाव, अनुभाव, शक्ति व्यभिचारी, तो ये कभी कभी अनुभाव या व्यभिचारी भाव के रूप में कभी कभी अनुभूत होता है, अत्यंत कष्ट में, दुख में, विरह में, और फिर थोड़ी देर के बाद में ये लुप्त हो जाता है। श्रीमती राधिका जी को ऐसे ही हो रहा है, कहां से पता लगा इनको ये भगवान है, पौर्णमासी, नंदीमुखी और गर्गाचार्य, इन लोगों के बातों से इनको कभी सुना था, किंतु मिलन के समय में भूल जाती है, अब विरह के समय में कृष्ण की बातें हम सब अब भूल जाएं, जब वो भूल गए तो हम भी भूल जाएं, जैसे हम लोग आंधी के समय में मन को एकाग्र करने के लिए सब चिंताओं को छोड़ते हैं, उसमें बारीक बारीक चीजें सब प्रवेश कर जाए बिना बुलाए, ऐसे बिना बुलाए, बिना आहूत किए हुए, बिना निमंत्रण के वो सब चीजें विरह में, वो कभी कभी भगवत्ता का भाव जो सुना है कहीं से वो आ जाता है। इसी ये आप ही श्याम थे, अच्छा, और दूसरी बात इसको इस रूप में कहा जाएगा, इसमें तो मूल में तो है नहीं, इसलिए इसको इस रूप में ले लेंगे, किसी ने कहा नहीं, श्याम को देख रही है, रंग को, और इस रंग में जहां तक कौआ तक को भी ले लिया। कला होता है, कौआ जैसे ठुकराता वैसे बामन जी ने ठुकराया, ऐसे ही रामचंद्र जी का और ऐसे ही इन कृष्ण का। ये काले रंग का दोष है, उनका कोई दोष नहीं, इसमें भगवत्ता का कोई भाव नहीं आया, कोई भी नहीं आया। ये भगवत्ता का भाव है, इसलिए भगवत्ता का भाव नहीं भी आया। और यदि कहते हैं तो उसके उस रूप में ले लें, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसी रूप में कहते हैं, पौर्णमासी जी नंदी मुखी और गर्भाचारी के द्वारा। तो उस कष्ट के समय में थोड़ा सा याद आया तो दिव्योन्माद तरंग के आघात में श्रीमती राधिका जी की सबल ये उक्तियां हैं। क्या राधिका जी ये नहीं जानती हैं कि कृष्ण का हृदय अत्यंत कोमल है? जानती हैं कि नहीं? बड़े उदार हैं, जानती नहीं है? क्योंकि वो कभी कभी कहती हैं असली स्वापाग्रता। कृष्ण को बहुत परम उदार, परम दयालु, सब सब गुणों से भूषित उनको जानती है, इसलिए वो जानते हैं जैसे कृष्ण बड़े स्नेहशील हैं। अब इसको सूर्पनखा के बात में जो कहा, ये दिव्योन्माद का यही लक्षण है, गुणों को दोष बना दे, उदारता को उसके कष्टों का कारण बतला दे। उनके जितने अच्छे अच्छे गुण हैं सबको में ये लगाएंगे, ये गुण नहीं है ये, बल्कि इसलिए कृष्ण की उदारता, कृष्ण का स्नेह, कृष्ण का प्यार, ये सबको दोष बता रहे। अर्थात गुणों में दोष को बताना, ये उसमें कृष्ण के जितने गुण हैं उनको ये दोष रूप ले, ये दिव्योन्माद। वस्तुतः सूर्पनखा का पहले तो मृगरिव कपिंद्रम विवृधे धर्मा, अधार्मिक जैसा कार्य किया रामचंद्र जी ने, बाली को मारा, बिना कारण मारा। बाली ने उनसे मरते समय में कहा, जब ये गए तो कहा, जैसे आप तो परम धार्मिक का बाना पताका उड़ा रहे हैं, धार्मिक है भी, हमें क्यों मारा? रामचंद्र जी चुप रहे, सुनते रहे। बतलाइए, आप घर से सब कुछ छोड़ छाड़ करके आए ना, पिता के वचन से बन गए, हमको क्यों मारा? उस समय में उनकी वार्तालाप हुई थी, उन्होंने कहा, छिप करके क्यों मारा? यदि मारने तो सामने क्यों नहीं मारे? और स्त्री की लड़ाई थी, आप अपनी स्त्री को लेना चाहते थे, हमसे कह देते, हम रावण से मंगवा देते, आपने ऐसा क्यों किया? एक पक्ष के लिए पक्षपात क्यों किया? हमने आपका तो अनिष्ट नहीं किया? तो उन्होंने युक्ति दी, देखो ये मेरा राज्य है, मेरे राज्य में कोई अन्याय करता है तो मैं दंड दे सकता हूं। उनका राज्य कुशल था ना, किष्किंधा था, किनके राज्य में था? यदि भगवत्ता के दृष्टि से कहे तो वो बात ठीक है, विश्व ब्रह्मांड उनका ही राज्य है, किंतु वहां पर भी कुछ चालाकी खेल रहे हैं। क्या है वो? अनुज बधु भगनी सुतनारी, इन्हें बिलो कहीं, क्या है पंडित जी? अरे पंडित जी बतलाइए, क्या समाचारी? इन्हें बिलो कहीं, इनको यदि बुरी दृष्टि से कोई देखता है तो उसको मैं शासन करता हूं। तो ये तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी, ये तुम्हारी कन्या है, ऐसा क्यों तुमने किया? अधर्म तुमने काम किया, यदि बलि जीवित रहता तो फिर वो भी पूछ लेता विभीषण ने रावण की, वो तो मैया लगेगी ना, मंदोदरी मैया लगती है, तो मैया को क्यों उन्होंने रख लिया, बड़े भाई की स्त्री मैया हो, तो उस समय कुछ और चलाकी करते, ये सब सोच रहे हैं। राम ने बहुत से इसके उत्तर दिए हैं, अंत में उसने अपनी गलती को समझा। विशेष करके मैं अभिमानी हूं, यही बात है, हमने इनको नहीं कुछ समझा, मना करने पर भी उनकी पत्नी तारा मना कर रही है, ये भगवान है, इनसे मत लड़ो, तो भी अभिमानी है, नहीं उनकी बात माना, अभिमान किसी का नहीं रखते, और मारा भी तो इसको सुगति दे दी, मुक्ति अनायासी दे दी, इसलिए राम का कोई दोष नहीं है, तो भी दोष में ही गुण में ही दोष खोज रही है। दूसरी भी बात है, शूर्पणखा है, शूर्पणखा उनके पास में आई मोहित होकर के, जिस समय आई और उनका मतलब जान लिया तो भी उसको कह दिया जी ठीक है तुमको मैंने ग्रहण कर दिया, किंतु जिस रूप में जगत के लोग ग्रहण करते हैं उस रूप में नहीं, मैं तुमको शुद्ध करके तब फिर ग्रहण कर लूंगा, आत्मा को ये जड़ शरीर से कोई तात्पर्य नहीं, इसलिए उन्होंने उस समय तो नाक कान काट लिया जी, और किसी के प्रति न ये झुके, ऐसा सर्वत्र ही रीति है, यदि इंद्रिया वशीभूत नहीं है हरिदास ठाकुर जैसी, कोई भी स्त्री है कोई पुरुष है अपना मन अपने वशीभूत नहीं होता, थोड़ा सा कोई हवा मिल जाए ऐसी, कोई स्त्री जाचना करे तो पुरुष, पुरुष जाचना करे तो स्त्री, दूसरों के वशीभूत हो जाते हैं, उस समय अपने को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, विश्वामित्र के लिए नारद जी के लिए और सब लोगों के लिए देखा जाता है ऐसा, इसलिए देखा उन्होंने स्त्री जाती है, जबकि किसी पुरुष ने इसको प्यार किया जैसा कि हमको इसने किया और ऐसा ही सुंदर वेश बना करके जाए, किसी रूप को देकर के लुप जाए तो वो उसको प्यार करेगा तो फिर गड़बड़ेगा, अब तो इसको मैंने ग्रहण कर दिया, अब हमारी ग्रहण की हुई चीज अब कहीं नहीं बिगड़े, इसलिए उसका नाक कान उस समय के लिए काट लिया। अब दूसरी बार इसका जब जन्म हुआ कुब्जा के रूप में, तो 16 वर्ष तक उसको कुबड़ी बनाए रखा, उसका ये सुंदर बहुत मुखारविंद बहुत सुंदर था, बहुत अद्भुत, किंतु वो कुबड़ी आठों अंग से कुबड़ी, इधर निकला हुआ इधर निकला हुआ ऐसा, वो कंस के दरबार में जाती, उसका मुखारविंद देख करके वो उसकी सेवा को लेता था, किंतु कुबड़ी थी इसलिए किसी की दृष्टि उस पर नहीं गई, और इसी की भी कुबड़ी होने से वो लालच न कर सकी जो हमको कोई ऐसा कोई मिले, जानती थी जी असंभव, इसलिए इस जन्म में भी उसकी रक्षा की, क्यों किंतु जब ही कृष्ण का स्पर्श हुआ हाथों का, परम सुंदरी हो गई, कृष्ण को जब चाहे ये ठीक है एक दिन आऊंगा, किंतु उसका प्रेम जैसा था कैसा साधारण, कृष्ण ने ग्रहण किया किंतु साधारणी के रूप में ही ग्रहण किया, उसकी सारी जितनी थी कामनाएं वासनाएं सदा के लिए उसको दूर कर दिया, और फिर उन्होंने मन से उसको ग्रहण कर लिया, किसी की कामना पूर्ण नहीं रखते, वो राम भी वैसे है ये भी एक ही, इसलिए उसकी पूर्ण कामना है, उसकी आत्मा को आत्मसात कर लिया, इसलिए यहां पर भी करुणा ही है, और बलि महाराज जी को जो ठगा उन्होंने, इनमें भी उनकी करुणा है, क्या करुणा, ठगा उनको, किंतु किसके लिए ठगा, उनके लिए ठगा, ये इसका करुणा इसका कल्याण हो, इसलिए उनको तीन पग भूमि की जरूरत है मांगने की, भूमि तो उनकी है या मांगने की क्या जरूरत है, किंतु अपने भिखारी बने उसके कल्याण के लिए, किस लिए, प्रहलाद महाराज जी के नाते, इसलिए उन पर करुणा करना था, किंतु उनको सुधार भी करना था। इसलिए तीन पग से उनको मांगा और मांग करके विराट शरीर आरंभ हो गया और एक में संपूर्ण पृथ्वी को माप लिया, दूसरी में तल से 14 भुवनों को नापा और तीसरी में काजी जगह दीजिए, तो उन्होंने अपने को ही दे दिया और काजी हमारे मस्तक को ले लीजिए, माप मैं संपूर्ण रूप से आपका हो जाऊं। तीन ले लिए, तो अभी कुछ बाकी था, इसलिए उनको प्रहलाद महाराज जी का संग दे करके सुतल का राज्य देख और प्रतीक्षा करें। इस तरह से उनकी कृपा ही सर्वपर्याप्त है, तभी ये गुणों में ही दोष देख रहे हैं। सुपर्णखा के लिए करें, सरलता से हो या कपटता से कोई चाहे कोई चीज भगवान के पास में मांगा तो देंगे कि नहीं, कपटता से हो सरलता से हो जैसे भी हो कोई चाह दिया जरूर देंगे, यही तो वंचा कल्प तरु है। इसलिए स्वामी भाव से उसने चाहा, आप हमारे पति, ये तो चाह ना कपटता से चाहा या जिस काम के लिए चाहा, चाहा ये ठीक है, उसका दोष दूर करके उसको उसी रूप में उन्होंने ग्रहण किया, किंतु दो जन्मों में उसकी प्रतीक्षा करके दूसरा कोई ना चाहे इसलिए उन्होंने करुणा करके ऐसा चाहा। एक बात है ये बतला रहा था मैं, पूर्व लीला में राम और वामन थे और उसको उन्होंने जाना, वो कह रहे हैं वो पहले बतलाया जैसे वो तीनों के तीनों की बात सुनिए, गर्गाचार्य पूर्णमासी और वो आनंद में उल्लास में ईश्वरत्व का बोध नहीं रहता, जहां आनंद मिलन में है उसको तो मिलन में ऐसा हो जाएगा जो वो क्या कहते हैं उसके अधीन है सब समय, स्वाधीन भत्रिका के रूप में, उस समय में उनको क्या जो भगवत्ता की अनुसंधान की क्या जरूरत है, इसलिए संपूर्ण रूप से वो भूल जाते हैं मिलन में। विरह काल में जैसे कि मैंने कहा, जैसे मैंने कहा बहुत विराट दूध के उसमें जब औंटने पर नीचे ऊपर जाता है तो कभी कभी वो दिखता है, इसलिए वो किंतु स्थायी भाव नहीं है, क्या है बतलाया उसको व्यभिचारी इत्यादि भाव का, एक ईश्वरत्व का भाव आ जाता है, जैसे उसी में एक आ जाता है लीला, अर्थात मैं ही कृष्ण हूं, ये भी अनुभव है उसका किया व्यभिचारी भाव। इसलिए उन्होंने कहा बतलाया ना, नखलु गोपिका नंदनो भमान अखिल देही नाम अंतरात्म देह। इसके दो तीन अर्थ होते हैं, एक तो साधारण में नखलु गोपिका नंदनो, आप निश्चित में ही यशोदा के ही नंदन नहीं है, अखिल देही नाम अंतरात्म देह अखिल देही होते हैं। दूसरा अर्थ होगा ओ आप निश्चित रूप में गोपिका के ही नंदन है, न अखिल देही नाम अंतरात्म देह, न को उधर में लगा दो, आप अखिल देहियों के जीवा क्या है, आप निश्चित रूप में जसोदा के, जब जसोदा के पुत्र हैं तो आप इतने निष्ठु कैसे हो गए, हम लोग को छोड़ करके चले, जसोदा जी में कितना स्नेह है, इसलिए मालूम होता है कि आप जसोदा के पुत्र नहीं है, ये उसमें भी विरह में कह रहे हैं दुख, मालूम होता है कि आप निष्ठुर हैं, जैसे कि देह में अंतरात्मा में जो ईश्वर होते हैं परमात्मा बड़ा भारी निष्ठुर होता है, कोई मर जाए तभी साक्षी, कोई आनंद में डूब रहा है तभी साक्षी, उनको कोई मतलब नहीं है। एक जज है कोर्ट में, कोई एक आदमी सचमुच में वो दोषी नहीं है, किंतु परिस्थितियां ऐसी कर रही हैं, गवार साक्षी रुपया पैसा इधर उधर से, जो उसको दोषी साबित कर रहा है, वो जानते हैं कि ये दोषी नहीं है, तो भी विवश है, कुछ कर नहीं सकते। तो ये जज के पद पर बैठे हुए परमात्मा है, इसलिए लोगों के सुख दुख से कुछ लेना नहीं है, न निष्ठुरता न कुछ, जड़ की भांति यहाँ पर देख रहे हैं बस। जान आप ही ऐसे ही हैं, हम लोग का दुख आप तक नहीं पहुंच रहा, इसलिए आप जसदा के पुत्र नहीं हैं, आप परमात्मा। ये भी दोष लांछन लगा रही है उन पर, वहां पर भी ऐसे जहां जहां भगवत्ता देखो, जैसे कि नंद बाबा ने कहा, तुम जैसे करे ये भगवान है तो इनके चरणों में हमारी प्रीति लगे, जन्म जन्मांतर में भी हमारा मन सब समय इन्हीं में लगे, इनके चरण कमल में लगे। ये सब चीजें स्थाई नहीं है। ये वो श्रीमती राधिका जी और सखियां विशेष करके कृष्ण को भगवान नहीं जानती, वो क्या जानती हैं, अपना प्रेष्ट प्रियतम, श्रेष्ठ नहीं, अपने से श्रेष्ठ नहीं, प्रियतम जानती हैं, उनके आज्ञावाही समझती हैं, या हमारी आज्ञावाही है ये। ये हमारे हैं, कोई समझती है कि ये मेरे हैं, और कोई समझती है कि मैं इनकी हूं, बस इतना ही। गोपियां कहती हैं कि ये हमारे जीवितेश्वर हैं, जगदीश्वर नहीं है, जगदीश्वर से कोई संबंध नहीं, क्या इनके दिखा बिना हमारे प्राण निकल जाएंगे। ये दूसरों की कही हुई बातें हैं, उधार ली हुई, अपनी है, अपनी होता तो स्थाई रहता, उधार ली हुई बातें कब तक रहती हैं, जब तक कि उसको हम नहीं दे देते, आ रहा है समझ में। उधार ली हुई बातें हमको जब ऋण चुका देंगे तब फिर इसकी जरूरत नहीं होगी, इसकी जरूरत कब तक है, जब तक हमारे ऊपर में ऋण है उनकी, गर्गाचार्य पूर्णमासी और नंदी मुखी इत्यादि के मुख से सुने हैं। कृष्ण मनुष्य नहीं, ये ईश्वर है, जगत ईश्वर है। गरीब लोग, एक गरीब आदमी, उसकी शादी होने जा रही है, उसके पास में कपड़े लत्ते अलंकार नहीं है, तो जब विवाह का दिन आता है तो दूसरों से, पास पड़ोसियों से उधार ले लेते हैं और गहना चढ़ा देते हैं, चढ़ने के बाद में फिर लौट करके जब बहू आती है तो उनका गहना लेकर के जिनका है उनको दे देते हैं। जानते हैं ऐसा होता है क्या, है? सब जगह ऐसा, गांव में, अब शहर में नहीं, अब मैं जानता, किंतु ऐसा हो। अच्छा, मैया तू मैया दे देती है और बड़ी बहू को कहती है, जो बड़ी बहू अपना गहना दे दे अभी, आज जब भी शादी हो जाएगी तो फिर आएगी तो फिर तुमको लौटा दूंगा, अपने बड़े भाइयों से और दूसरों से ये सब ले ले। मान लिया कि कभी किसी को अपनी ससुराल जानी है और अच्छा कपड़ा नहीं हुआ, देखा जी हमारे मित्र के पास में कोई अच्छा सा भड़कीला कपड़ा है, भाई दे दो, मैं कल जा रहा हूँ अपनी ससुराल, वहां से आऊंगा तुमको दे। विशेष करके बंगाली लोगों को घड़ी और ये साल बहुत प्रिय होती है, नहीं? गर्मी दिनों में साल गिरवी रख देते हैं, घड़ी ले लेते हैं, और जबकि ठंड के दिन होता है ना, ठंड का दिन अभी, तो घड़ी को गिरवी दे करके एक साल ले लेंगे। हमने सुना है कब बात, अब ठीक है कि नहीं, मैंने ये नहीं, ऐसा आदमी करते हैं तो अनुष्ठान होने पर फिर हम इसे लौटा देते हैं। अच्छा, ये विशेष करके गरीब जगहों में, गांव में अधिक होता है, शहरों में यह नहीं होता। ये उधार लिया है, उधार कौन दिया, गर्गाचार्य जी, पूर्णमासी जी, नंदी मुखी, उधार दिया किनको, गोपियों, कब के लिए, जब विरह में तड़फ रही हैं उस समय के लिए उधार दिया। इनकी अपनी संपत्ति नहीं है, यह संपत्ति दूसरी की है। अपनी संपत्ति क्या है? कृष्ण हमारे हैं, हमारे प्राण प्रिय हैं, हमारे बंधु हैं, बस इतना है। ये उनकी अपनी संपत्ति। अब वो काम जब खत्म हो गया, मैंने विरह जब दूर हो गया, तो क्या होगा? भैया ये चीज तुम्हारी थी, ये तुम ले जाओ। इसलिए उनको लौटा दिया, फिर जरूरत नहीं रहती। ऐसे ही इस सब चीजों को सामंजस्य करना चाहिए। कृष्ण से मिलने से के समय में वह वस्तु जरूरत नहीं होती, और जब जरूरत होती है तो उधार ले लिया। अब विरह में इनकी जरूरत हुई, कृष्ण को कुछ कटु कथाएं सुनानी है, इसलिए उस समय में कहते, अच्छा आप भगवान हैं, इसीलिए तो आप सर्वदर्शी हैं, आपको सुख दुख की अनुभूति नहीं है, निष्ठुर हो जाते हैं आप, इसलिए उस समय की बात। और इस श्लोक में पदल मसित सखई दुस्त जत तत्कथार्थ, इस श्लोक में ऐसा कुछ नहीं है जो वो भगवान है, इनको चीड़ है केवल असित काले वस्तुओं से। इसलिए कृष्ण के ऊपर में ये कह रहे हैं, ये भगवत्ता का नहीं, एक कृष्ण तुम, तुम्हारा अंतर बाहर काला, और एक काला था राम को हमने सुना है, वो भी अंतर बाहर काला निष्ठुर, और तीसरा था वो भी ऐसा काला, वो भी काला उसका बाहर निष्ठुर इत्यादि, और चौथा का उपमा दे दिया कौवे से। कोई जरूरी चाणक्य भी काला था, वो वहाँ का पुरी में एक था जो पंडित महाकाला, वो भी ऐसा, क्या नाम था महाकाला, किंतु ऐसा ही वो धड़ीबाज भी था, जैसा जैसा ओहो है। इसलिए श्याम नाम के वस्तुओं में ही ऐसा है, इसलिए इनसे हमारा क्या प्रयोजन है? कोई भी प्रयोजन नहीं। इसलिए ये श्याम रंगों की कुटिलता देख करके ही श्रीमती जी ने ये सब कहा, और वो भी स्थाई भाव में नहीं, बस थोड़े समय के लिए, जब वो खत्म हो गया उसे कोई मतलब नहीं। अब उन्होंने कहा, भ्रमर ने जरा सिर को हिलाया, ऐसे ऐसे किया, और कर करके थोड़ा सा इधर उधर घूम करके कहता, जी स्वामिनी जी यदि इतने ही वो खोटे हैं, निष्ठुर हैं, धूर्त हैं, और जैसा आपका यहाँ लांछन लगा रही हैं, तो फिर उनकी बातों से क्या आपको जरूरत, आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए। तो वो कह रहे हैं दुस्तज तत् कथा, माने उनको तो भूल सकती हैं, उनकी कथाओं को नहीं भूल सकती, संग हम भूल सकती हैं, किंतु प्रसंग नहीं भूलेंगी। संग माने उनका साक्षात, किंतु प्रसंग हम नहीं भूल सकती। प्रसंग माने उनकी जो बातें, ये अपने बस की बात नहीं है, किसी चीज को स्मरण करना भूल जाना ये अपने बस की बात है, ये संभव नहीं। क्यों? मन ये मत, मन इतना तेज है, वायु सा दुष्कृतम, वायु को कंट्रोल कर किया जा सकता है। यहाँ पर वायु माने क्या बतलाया? वायु को पकड़ना नहीं, प्राण वायु। अभी थोड़ा सा देखो तो श्वास रोको, एक दो गिनो, कितना गिन सकता है? 60 तक गिनेगा तो एक मिनट, एक सांस में 7 गिनो तो देखो जो प्राण धारण कर लेगा। 2 मिनट करो, 3 मिनट, 4 मिनट, इसके बाद में नाक और मुख दोनों बंद कर दो, फिर क्या होगा? छटपट छटपट करने लगा। ये 2 मिनट में तो ये स्थिति प्राण वायु को, तो वायु ये जो प्राण वायु है या ये वायु है, वही वायु तो है, एक सेकंड में व्याकुल कर देगी, बड़ा भारी कठिन है,
हैं, तो तुम मन को क्या कंट्रोल करोगे, उससे भी कोटि गुनी ये अधिक। मन को इसमें से निकालो ये संभव नहीं। इसलिए कह रहे हैं दुस्तज कठिन है, योगियों के लिए भी कठिन है, ये गोपियों के लिए सहज साध्य है। ये उनको भूलना चाहती हैं और मन कहाँ जाता है, वो कृष्ण में ही घूम फिर करके उनके प्रसंग में चला जाता है कृष्ण नहीं रहने पर। उसी के लिए कृष्ण पर ये दोष दे रही है। ये हमारा दोष नहीं है, ये दोष किसका है, उसी काले का ही दोष। उसका संग जैसा है प्रसंग भी वैसा ही, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। दुस्तज कठिन है, जब अनुचरित लीला कर्ण पीयूष पिवृत सकत ददन विधूत दंद धर्मा विनष्टा शपति गृह कुटुंबम दिनम सृज्य दिन बाबा विहंगा भिक्षु चर्चा। कहते हैं अरे भ्रमर, बुद्धि से बात कर, बुद्धि तुमको नहीं आने षटपद है, और उनका भी अधिक दिन संग नहीं किया, वो थोड़ा जो तुमको सिखला दिया है ये कैसे स्तुति करनी चाहिए, कैसी बातें करनी चाहिए मीठी, किसी को भुलाना है तो कैसी बातें उसकी प्रशंसा की जाए, ये तो थोड़ा सा सिखाया, और तो तुमको कुछ सिखाया नहीं। इसलिए कह रहे हैं जद अनुचरित लीला, कैसे भूल जाए हम उसको, एक बार भी सकद पहला दूसरा श्लोक अधर सुधा स्वांग मोहिनी, एक बार केवल एक बार पिला दी, हम जीवन भर नहीं भूल सकती, उसका ऐसा लग जाता है चस्ट का, हम भूल नहीं सकते। फिर एक बार जब अनुचरित लीला कर्ण पीयूष पिवृत सकृत, सकृत मैंने कहे एक बार भी, जब अनुचरित लीला कर्ण पीयूष पिवृत एक बार भी थोड़ी सी भी ईशत उनकी लीला कथाएं, उनका चरित्र, उनकी कोई कथा कानों में यदि किसी प्रकार से एक बूंद भी आधी बूंद भी यदि चली गई तो क्या होगा, विधूत दंद धर्मा विनष्टा, उसका दंद धर्म सदा के लिए, दंद धर्म तो जाना अच्छा है, दंद धर्म मैंने यहां कर रहे हैं स्त्री का पति के प्रति, पति का स्त्री के प्रति, ये द्वंद्व धर्म, बेटा बाप, बाप बेटा, यदि ये सुन लिया, बेटे ने सुन लिया तो पिताजी को भूल जाएगा, और पिताजी ने सुन लिया तो बेटा मर रहा है उसको छोड़ करके चले गए। चैतन्य महाप्रभु के कानों में ईश्वरपुरी ने थोड़ा सा ढाल दिया और वो एकदम बदल गए, अब वो निमाई नहीं रहे, और घर में आकर के मैया रो रही है, बहू अभी नहीं है, लड़का नहीं, खाने के लिए कोई ठिकाना नहीं, सबको छोड़ करके कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इनकी रुलाई नहीं देख रहे, दिन रात रो रहे हैं, मैया को रुला रहे, स्त्री को बुला रहे हैं, आधी रात में सबको छोड़ करके रोते रोते गंगा में कूद पड़े। जाड़े के दिन माघ के महीने में ठुठुती हुई ठंड, और चले गए मस्तन मुड़ा करके सन्यासी, गुरु नहीं दे रहा मन जबरदस्ती, समाज के लोग नहीं दिला रहे, और सबको छोड़ करके दी, कैसा निष्ठुर, घर की कभी याद नहीं की, ऐसा निष्ठुर, एक बार कान में पड़ने से। इसी तरह से सकत दन विधूत दंद धर्मा विनष्टा शपति गृह कुटुंबम, उसी प्रकार से भाई 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 को भी भूल जाता है, बहन को भूल जाता है, जहां प्रेम का आधार है वो सबको भूल करके अपने आप रोता है और दूसरों को भी रुलाता, अपने भी रो करके शांति होती तो नहीं, घर वाले भी रोते हैं, और यहां आकर के सुखी हो गया वृंदावन में नहीं, यहां पर भी रोता है। शपति गृह कुटुंबम दिनम सृज्य दीना, तीन है वो, अपने भी दिन बन गया, हम सबको सदा के लिए छोड़ दिया, एक बार भी नहीं देखा जी मैया कैसी है, बाप कैसा है, वृद्ध हमारी पत्नी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, कोई भी बाबा भी वह बिहंगा बाबा एक दो नहीं, जिनके कानों में एक बार भी गया है उसका जीवन भी ऐसा बदल गया, ऐसा वो निष्ठुर है जैसा उसका संग निष्ठुर है, उसका प्रसंग भी वैसे ही, उसकी बातें भी वैसे ही निष्ठुर है उसको ऐसा। हमारे साथ में यही हुआ, हम कहीं की नहीं रहे, घर की नहीं रही, बाहर की नहीं, अपनों की नहीं रही, हमारी ऐसी दशा। ऐसे ही विहंगम, विहंगम माने पक्षी का, पक्षी में भी इसको समझो हंस होता है ना, हंस भी पक्षी है ना, उसमें भी परम हंस होता है राजहंस। यहाँ पर हंस मैंने क्या,
नील को जो
अलग कर देता है, परमहंस कौन, परमहंस कौन होता है,
राजहंस
और कुटी चक बहुचक
परमहंस,
ये चार स्थिति है ना। तो इसमें परमहंस कुटी चक वाला दूर हो गया, कुटी चक माने क्या, कुटी निर्माण करके रहते हैं हम लोग, कैसे हैं
कुटी चक,
हम लोग हंस कौन से हैं, रंगे रंगाए हैं, रंगे रंगाए
हैं,
घर की याद आती है, मैया की याद आती है, महाराज जी मैं नहीं रहूंगा यहाँ, मैं जहाँ था वहीं जाऊंगा, आपका नाम क्या है, मेरा नाम अमुक ब्रह्मचारी है, परमहंस ब्रह्मचारी, घर की याद आ रही है, वहां वहां जहाँ था वहीं थी, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, वृंदावन में नहीं रहेगा, तो नहीं नहीं वृंदावन में, अरे साधुओं के साथ में कुछ हरी कथा, नहीं मैं नहीं रहूंगा, मैं वहीं जाऊंगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, जहां पर आदमी सब मैदान में क्या करते हैं सवेरे भोर में, और सुअर क्या करती है उसमें हमको आनंद है, जहां पर साधु संत न रहे, कोई हरी कथा न मिले, वृंदावन धाम न रहे, सहजी रूप में तुलसी गंगा जमुना इत्यादि का, वो अच्छा नहीं, हम तो वहीं पर जाएंगे, कुटी चक को छोड़ करके, कुटी को छोड़ करके, केवल कुटी जहां पर पहले बना दिया बस वहीं रखे भजन कर, अब वो कुटी भी छोड़ दी, जहां कहां पानी है सब ग्रहण करके, माने आसक्ति रहित होकर के भगवान का भजन करना। और इसके बाद में हंस, खीर नीर का विवेक हुआ, जड़ और चेतन का विवेक हो गया, अब जड़ को छोड़ करके चिन्मय धारा में भक्ति में बह रहा है। और परमहंस कौन हुआ, परमहंस उसमें भी दूध में भी ऊपर को छोड़ दिया, उसमें भी जो कुछ है अंश है, दूध को गर्म करके दही बनाओ, दही को बना करके मट्ठा बाहर कर दो, मक्खन ले लो, मक्खन को पिघलाओ, तो फिर क्या बच गया, ये बच गया, और बाकी क्या जो रह गया वो काला सा खट्टा खट्टा छिबड़ा या क्या, अच्छा उसको भी फेंक, अब रह गया। ऐसे ही प्रेमा भक्ति जो है, और प्रेमा भक्ति में अनन्य जो भाव है उसको जो है वो परमहंस है, बहुत गंभीर विषय। ये लोग क्या है, ये कह रहे हैं विहंगों में ये जो हंस हैं, हंस में भी जो परम हंस हैं,
इस तरह से
ये कैसे भिक्षु चर्चा चरंती, जैसे पक्षी लोग होते हैं वो कहीं से भिक्षा उक्षा भी नहीं लेते, क्या करते हैं जहां कुछ मिल गया उसको ले लिया, पेड़ों के कोमल पत्ते जैसे कहीं पर कुछ मिल गया वहीं ले लिया, जहां पानी पी लिया, ऐसे विचरण करते हैं, बड़े आनंद से रहते हैं, पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते। ऐसे ये भिक्षु चर्चा दिन रात रोते हैं परमहंस लोग, किस लिए, कृष्ण के विरह में, और दूसरों को भी रुलाते हैं, ऐसे भिक्षु चर्चा चरंती, ये उसके प्रसंग का ये फल है। एक बार कानों में कैसे भी पड़ जाए तो हम लोगों के कान में भी नहीं पड़ा है, क्यों, आ तो रहा है हमारे कानों में किंतु यहीं तक अटक जाता है, क्योंकि कान भरा हुआ है, यहां नहीं ले जाता, हमारी दशा है उस व्यक्ति की भांति जो कालिदास के दरबार में एक कोई औघड़ वो एक ये ले खोपड़ी और रख दिया, कहा जैसे ये बुद्धिमान है कि मूर्ख है। ऐसा तो आज तक हमारे दरबार में कोई आया नहीं, प्रश्न नहीं किया। दरबारियों को तरफ देखा, दरबारी लोग बहुत चक्के रह गए, कोई उत्तर नहीं दे। ये अरे यदि रहता तो बातचीत कर करके मूर्ख है कि ये बतला दे। कालिदास उस दिन बाई चांस लेट हो गया था, नहीं का जैसे सब मूर्ख है, जितने बैठे हैं सब मूर्खों का दल, ये बतला नहीं सके, अब मैं जा रहा हूं। इतने में कालिदास महाराज ने कहा एक मिनट और बैठिए, आपके प्रश्न का देखेंगे उत्तर हो जा सकता है। कालिदास को कहा भाई ये तो बहुत विकट समस्या में, ये मूर्ख है कि पंडित है, उसकी केवल खोपड़ी है। कहा कोई बात नहीं है, सुनो सुनो, एक सीख मंगाया नारियल का और उसके कान में दिया, तो कान में दिया तो इधर से दिया और इधर निकल गया। कहा नंबर ही मूर्ख था क्योंकि इधर लिया उधर उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। यदि ये यहां से जाकर के ऐसे चली जाती तो ये बुद्धिमान होता। सब लोग बड़े अच्छा, आज हम कालिदास ने हमारी इज्जत बता दी। तो हम लोग अधिकांश जितने हैं ये सीधे सीख जा रही है, इसलिए असर नहीं होती। पूर्व जन्म की कुछ सुकृति होती, ऐसा कुछ आधार होता तब तो ये बात होती। पूर्व जन्म का कोई आधार नहीं, इस जन्म में बहते बहते ना जाने कैसे लग गए साधुओं के संग में, इसलिए कोई चीज का असर नहीं होता। यदि बुरा संग होगा उसमें फंस जाएगा, कपटता रहेगी, धूर्तता रहेगी, सांसारिक वस्तुओं की कामना रहेगी। कहां ये सब सुंदर कथाएं ये हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करते। और सुनने वाले के प्रति जो सुनाने वाले हैं या ये शास्त्र कारगण है, भक्ति विनोद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका से बतला रहे, सुखदेव गोस्वामी बतला रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी को व्यास से मिली, व्यास जी को मिली कहां से? नारद जी से। नारद जी के कहां से मिला? ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को कहां से मिली? ये नित्य चीज है, उसमें हमारी निगम कल्प करो गलित अनुफलम, और उसमें हमारी रुचि, इससे पढ़ करके दुर्भाग्य है। हम लोगों की अवस्था देख करके साधु संत रोते हैं, गुरु वैष्णव लोग रोते हैं, आचार्य रोते हैं, भगवान रोते हैं, किंतु हमारा आधार ही ठीक नहीं ये चीज को ग्रहण कर सकते। एक बार ये कर रहे हैं, ये झूठ है कि सत्य है, गोपियां कर रही हैं। एक बार भी जिसके कान में भगवान की ये सब लीला कथाएं आ जाए तो ऐसा परमहंस बन जाता है। ये बात गलत है कि ठीक है? तो क्यों नहीं हो रहा है? माने नहीं जा रहा है, कान में हमारी मैल भरी हुई है, नहीं जा रहा है, या यहां से सीधा यहां निकल जाता है, ये दुर्भाग्य है। साक्षात्न सत्यम कृतवतो च दुख दुख दुखिन्यो अभो तत्र किंचित। हमने जानबूझ करके इनके साथ में सख भाव दिया, इनको सखा बनाया, इसलिए हम लोग दुखी आज हैं। और यह जान करके इनका जो प्रसंग है, इनकी कथा है, ये बड़ी बड़ी दुखी होगी, दुख देगी, तो अभी एक बार काम में आ गई, इसलिए अब हमारे बल बूते की बात नहीं, अब इसको छोड़ नहीं सकते। तुम्हारे कहने से कैसे छोड़ दे? चाहती हैं छोड़ दे, किंतु नहीं छोड़ता। तल लीला कथापि सर्व जगत संताप संतापनी इत्या, उनकी लीला कथाएं भी ऐसी सबको संताप देने वाली। इन लीला कथाओं से सचमुच में जिसको संताप हो उनका तो जीवन बन गया, विरह यदि हो गया कृष्ण के प्रति, मिलने की आतुरता बढ़ गई, और यदि जगत को द्वंद्व को हम लोग भूल गए तो जीवन सार्थक हो गया, किंतु नहीं होता। सब कुछ छोड़ने पर भी अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करने की लालसा, जूता अच्छा हो, घड़ी फर्स्ट क्लास की हो, ओढ़ने की साल भी फर्स्ट क्लास हो, पुरानी टोपी नहीं नई नोटी, ये अच्छी रहे, सुंदर सुंदर ये सब चीजें। महाप्रभु ने यह बतलाया, भालो ना खाई भालो ना पोरी, तभी हम लोगों को नहीं ये समझ में आया। इसका मतलब है जैसे हम लोग उस लाइन में अभी नहीं, अभी कुछ है इच्छा किंतु अभी नहीं ठीक हो रहा, इसलिए उसके कारण जब जस्या अनुचरितम, अनुचरितम उन्होंने जो जो लीलाएं की हैं और अपने पीछे वो छोड़ गए हैं वो लीलाचरित। कृष्ण तो चले गए किंतु उनकी लीला कथाएं कब तक रहेंगी? जब तक ये धराधाम रहेगा, नहीं रहेगा तो भी लीला कथा रहेगी। ये सब ध्वंस हो जाएंगे किंतु लीला कथा ध्वंस नहीं होगी। प्रतिक्षण चेष्टितम एव लीला, उनकी प्रत्येक चेष्टाएं ही लीला है, वही चरित्र है। प्रत्येक उनका जगत में आविर्भाव होना, उनका करवट बदलना। अब कैसी कैसी टीकाएं परसों हो रही थी पंडितों के समाज में, वो जो 3 महीने के बाद में क्या लीला हुई, उत्थान। उत्थान माने वो पंडित जी कह रहे थे, मनोहर लाल शास्त्री वल्लभाचार्य ने कहा जैसे 3 मास होने पर 90 दिन हुआ ना, तो 3 महीने के बाद में वो करवट फेरने का दिन नहीं है। ये लोग कहते हैं ये क्या चीज है, उत्थान। उत्थान माने क्या, बच्चे को लेकर के 3 महीने के बाद में बाहर में ले जाते हैं। इसलिए उस दिन किसी देवता के यहाँ ले जाएंगे, जमुना जी का पूजन कराएंगे, गंगा जी रहे तो गंगा जी में, या कोई साधु पुरुष है उसके सामने ले जाते हैं, वो कह रहे हैं। किंतु हम लोगों के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने क्या कहा, अत्यंत सरल सहज रूप में जो चीज है उसी को लिया, पार्श्व परिवर्तन। उस दिन उनको आनंद हुआ। क्यों आनंद हुआ,
ये बच्चा बड़ा
हो गया। उनको 3 महीने का जब 90 दिन का हो गए तो उतना उल्लास उस व्यक्ति को नहीं होगा, माता पिता को, जो हम ले जा रहे हैं जमुना जी को पूजन कराने ले जाएंगे। अभी तक उसके ऊपर में प्रतिबंध था जो 3 महीने तक बच्चे को बाहर घर से मत ले जाओ, किसी की नजर लग जाएगी, हवा लग जाएगी। इसलिए यहाँ पर आनंद किस लिए, अब तक मेरा बच्चा अभी ऊपर ही क्यों देखता था, उसको जैसे लेटाते वैसे लेटता था, उसको ये क्षमता नहीं, इसी शक्ति जो करवट बदल सके। एक मच्छर भी ऐसे ऐसे कर दे वो नहीं कर सकते। वो क्या करता है, यदि कुछ भी होता है पैर को उछलता है, हाथ को उछलता है, वो करके रोता है, बस यही किया। आज लाला हमारा इधर देखकर भारी आनंद हुआ और उसको उसमें लिखा है जैसे पांच परशुराम के दिन में कहीं ले नहीं गई, बल्कि ये लिखा है जैसे रसोई बना करके और सब लोगों को निमंत्रण करके घर में ले आई है। यदि बाहर ही ले जाना होता है उस दिन हमारी कहने की इच्छा दीजिए कह दूं, किंतु फिर समय नहीं रहा तो बाद में नहीं, घर में उत्सव बना रही और हजारों स्त्रियां पुरुष लोग उनके घर में आए हुए हैं।
चक्रवर्ती ठाकुर बोले कि जन्म के दिन में तो यशोदा जी ने स्वागत नहीं कर पाई,
इसलिए आज स्वागत कर रही है।
महिलाओं को अपने
घर में निमंत्रण बुला करके लिए और घर में पकवान इत्यादि सब बन रहे हैं और बड़ी चहल पहल रच रही है, और उस समय में बच्चे को भी भूल गई उन लोगों को स्वागत करने में। किंतु ये भक्ति का विरोधी नहीं है, भक्ति का विरोधी नहीं है, कृष्ण से संबंधित है ना, ये कृष्ण के भक्त लोग हैं, कृष्ण के पारिवारिक जन है। यशोदा मैया उनके साथ स्वागत में सत्कार में ही इनको भूल गई, जैसे बच्चे को दूध पिलाना है या कुछ करना है देखना है, वो भूल करके उसी में लग गई, तन्मय हो गई, थोड़ी देर के लिए भूल गई। तो उस समय में करें, ये भी एक चेष्टा है ना, ऐसे बदल जाए, ये भी चेष्टा एक लीला। ऐसे ऐसे फेंक रहे हैं और कभी अपने अंगूठे को मुख में दे रहे हैं, ये भी एक चेष्टा लीला है। त्रिलावत इत्यादि का मारा जाना, अगासुर बकासुर इत्यादि को मारा जाना, जितनी भी चेष्टाएं हैं गोपियों की है आना, कितनी प्रकार की चेष्टा अपने को निर्दोष साबित करना, ये सब क्या, ये और भी मधुर लीलाएं। ये सब लीलाएं जो है मधुर चेष्टाएं हैं। लीला स्वयं करने की उस उनकी ये सब लीलाएं कान में प्रवेश कर जाए, शब्द मात्र एव, शब्द मात्र ही क्या, कृष्ण ने ऐसा करवट, कृष्ण ने मधुर बंसी बजाई, सब लोग आकृष्ट होकर के चली गए, उल्टे पुल्टे बेसों में आ गई, ऐसे अपने धन को खोते ही चोर कहीं लेकर के बाहर, उसके पीछे में विवश होकर के दौड़ रही। कृष्ण ने पूछा, आपका स्वागत है, ठीक से भली भांति आ गई तो, कहीं कोई अकुशल तो नहीं है, किस लिए आई? ये सब जो चेष्टाएं हैं, ये चेष्टाएं किसी के कान में पड़े और फिर उस चीज को भूल करके यदि माया में जाए, वैसा संग छोड़े तो उसको क्या कहा जाएगा? ऐसा दुर्भागा पृथ्वी में कोई जन्म नहीं लिया ना? शब्द मात्र, यदि थोड़ा सा भी शुद्ध हृदय है, थोड़ा सा भी, तो क्या होगा? कान में जरूर प्रवेश कर सकते। यदि नाम हमने किया एक बार भी, नाम एक कृष्ण नाम करे प्रेम कारण भक्ति करण प्रकाश, एक कृष्ण, तब ये समझेगा कि एक कृष्ण नाम हमारा नहीं हो रहा है। कैसे करने से नाम है, उसके लिए चेष्टा तो होनी होगी, नहीं तो ये सब झूठा है, इसका कोई तात्पर्य नहीं, ये सब धोखाबाजी है। गुरुगिरी इत्यादि वैष्णव इत्यादि भाव और शास्त्र सब झूठे हैं, क्योंकि हमने तो देखा, हमने तो 5 वर्ष नाम किया, बहुत बहुत नाम किया, कुछ नहीं हुआ। नहीं, ये गलत, शब्द मात्र ही प्रवेश करे। सुखदम किंग पुनरअर्थत इति भाव, तो क्या होगा? एक बार भी यदि आ गया तो फिर नहीं छोड़ सकते, वो बहुत ही मनोरम सुखद और मधुर होता है। तस्या अपि पिब्रुत, पिब्रुत मीन्स तस्या अपि सकद अपि अदनम किंचित आस्वादनम, विप्रुत माने क्या, आस्वादन के साथ में यदि वो लीला कथाएं हमारे कान में गई, कान से सुना जाता है, किंतु यहां कहा पीना, कुछ विशेष मतलब उसमें भी बतलाया ना, पिवत रसमालयम बहु रहो, श्रवण करने की बात है तो कहे पीना, आस्वादन के साथ में यदि इसको श्रवण किया जाए तब तो ये पीना होगा, अन्यथा पीना नहीं होगा। हम लोग अभी नहीं पी रहे, अभी क्या करें, अज्ञता से तुच्छ चाचल्य समझ के, गुरुत्व नहीं दे करके, अनर्थ रहित युक्त अवस्था में हम इसको तुच्छ चाचल्य के साथ में कुछ श्रवण कर रहे हैं, डर के मारे बैठे हुए हैं, नहीं तो महाराज जी बिगड़ जाएंगे, हरि कथा में नहीं आएंगे। इसलिए पालन करने की नियत से यदि होता है, आस्वादन के साथ में आस्वादन थोड़ा भी हो जाता तब जीवन भर नहीं भूलता। इन कथाओं के, कथावाचक के, उस ग्रंथ के, सबके हम ऋणी हो जाते। इसलिए पिप्रुट का अर्थ, पिप्रुट पी माने भी विप्रुट, प्र से वैसी को ले लो, पान करना, आस्वादन करना, तनिक भी यदि हो, विधूत विशेष से न खंडिता द्वंद धर्मा, स्त्री पुरुषादि परस्पर संबंध आख्य धर्म, स्त्री पुरुष या परिवार संबंधी संसार संबंधी कोई भी द्वंद धर्म है, ये सब धुल जाएगा, धुल जाएगा एकदम साफ। तो कथाएं स्त्री से, यदि स्त्री सुनती है इस कथा को, पुरुष को भूल जाएगी, मैया बाप को, भाई को, सबको, संसार को भूल जाएगी, और यदि पति सुनता है तो स्त्री के पति स्नेह को सदा के लिए छोड़ देता है। एवं पुत्र, यदि पुत्र सुनता है तो पिता को, माता को भूल जाता है, और माता यदि सुनती है तो पुत्र और पति सबको भूल जाती है। परस्पर परस्पर त्याग विशेष नष्ट, त्याग से वो प्रीति नष्ट हो जाती है संसारी, वो सारी आसक्ति प्रीति सब आ जाती है उस कथा में और उनके प्रति। कितना बजे? कब से आरंभ किया? 5:15 से। इति तेषां नाशे तथा न दुख तथा वैराग्य इति संसारी लोकानुभव एव प्रणाम प्रमाणम इति। ये संसार में देखो, हम लोग भी आए किस लिए, आप लोग किस लिए आए, कहीं ना कहीं कुछ कृष्ण की बातें सुनी थी इसलिए आ गए, सुकुश सुकृति थी। किंतु किसी किसी की ऐसी है, उस सुकृति न होने के कारण में चित्त चंचल है, भगवान में नहीं लग रहा है, इसलिए कहते हैं कि यदि कोई सुना तो ये सब द्वंद धर्म नष्ट हो जाने से तथा न दुख जथा वैराग्य, वैराग्य हो जाता है संसारी को, और प्रीति चली जाती है कहां, कृष्ण के राधा जी के चरणों में चली जाती है। संसार में ही ऐसा होता। अब उसी का उदाहरण दे रहे हैं, कैसे, किंच ते जना स्निग्धम मनसो अपि कठोरस्य कृष्णस्य लीला शौन आदि कठोरो निर्दय कृतघ्नाश्च भवन्ति। कृष्ण के समान ही, तुम्हारे समान ही, कृष्ण के समान ही वो कठोर निष्ठुर क्रूर कठोर भाषी इत्यादि निर्दय हो जाता है, ये गोपियां कह रहे हैं। सपति, सपति मैंने साक्षात प्रत्यक्ष कथा श्रवण मात्र एव गृह कुटुंबकम नित्य पिता माता का सब उपकार भूल जाता है, एकदम कृष्ण के समान निष्ठुर बन जाता है। ये कथा की अपनी शक्ति है, यदि उसको उस रूप में सुना जाए। बिल्लो मंगल ने कथा सुनी कुछ, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने कथा सुनी, हमारे सब गोस्वामियों ने कथा सुनी, प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सुनी, हमारे गुरु जी राजपुत्र जैसे होकर के सुना एक बार, हाँ बस 16 वर्ष की स्थिति में सब, कितना कठोर कष्ट और ये सब सहा। कभी गुरु जी को साधु संग एकता भी हरि कथा नहीं छोड़ा, ये सब छूट जाएगा किंतु वो जीवन आत्मा अजरामर कभी नहीं छूटेगा, न कृष्ण मरेंगे न हम मरेंगे, सदा के लिए हो जाएगा। दीनम अनन्यो उपाध्य कस्त अभावात्ते, माता पिता बड़े दुखी हैं, वृद्ध हो गए हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं, और ये क्या किया, 16-17-18 वर्ष की उम्र में अब जवान हो गया, कुछ उपार्जन कर सकता था या उपार्जन कर रहा था, सब छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, पढ़ना लिखना छोड़ दिया, कोई काम करता था, बिजनेस करता था, नौकरी करता था, सब छोड़ करके पागल होकर के अपने आप रोता है, उनको भी रोता है, एकदम निष्ठुर बन गया। इसलिए क्योंकि ये कृष्ण ऐसे निष्ठुर है, उनकी कथाएं निष्ठुर है, कृष्ण के लिए दिखला रहे हैं। पते जी आज कल क्या खाएंगे ये भी याद नहीं उनको, भूल जाते हैं, और अपना सर्वस्व बेच करके उसको खिलाया पढ़ाया लिखाया और उसने को भूल जाते हैं। संसार वाले इसलिए नहीं समझ पाते। मैं कुछ दिनों के बाद में मुझको घर वाले जबरदस्ती ले गए तो मैं हमको लेकर के लोग बस से जा रहे थे घर, तो छोटी छोटी लड़कियां कहते देखो तो कैसा ही है, सुनते हैं कि पढ़े लिखा है ये, अभी तो ऐसा है, इतनी भी अकल नहीं कि माता पिता ने इसको इतना पाला पोसा और विवाह भी कर लिया, और ये बुद्धि नहीं जैसे इनका पालन पोषण करें, और काम नहीं करता भाग गया। मैं सुना, मैं क्या उत्तर दूं, से ताना कस रही। तो कभी हमको रोष, अभी तभी नया था, कभी कभी रोष था जब कुछ बोले, तो हमारे साथ में एक थे हमसे कुछ, वो बड़े उम्र के थे, उसी गांव के थे, पढ़े लिखे आदमी, नहीं समझता संसार, नहीं समझता है, क्यों हो जाता है ऐसा। अरे नारद जी की मैया मर गई और ये आनंद के मारे उछलते हुए भगे वन जंगल में,
संस्कार भी नहीं किया,
दाभी संस्कार नहीं, किंतु जिसको अभी ये ज्ञान है कि हमारा मैं इनकारी हूं, तो उनको करना चाहिए। किंतु जहां ऐसा हो गया कि आत्मा अजमर है, ये शरीर मट्टी का है, इससे हमारा कोई भी नहीं है संबंध, वो लोग इससे मुक्त हो जाते हैं। किंतु जिनको ये है कि हमारे ये पालनी है, हमारे पालन करने वाले हैं, उनको ये करना चाहिए तो उनको पाप लगेगा, जरूर पाप लगेगा, उनको घर नहीं छोड़ना है। अथवा आज यहीं तक रहे, बहुत अंधकार हो जाएगा और प्रसंग भी बहुत है, इसलिए आज यहीं पर छोड़ देते हैं, कल से यदि ठीक रहा तो ये प्रसंग को समाप्त करेंगे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधु प्रतिदान आओ वैष्णव, विचार करो भजन करो।